بنت من الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. آپ سب کو شعبان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اور کل جو میں نے نیوز میں سنا، کوارنٹائن کے ڈیز مزید انہوں نے بڑھا دیے، 15 اپریل سے 24 اپریل کر دیا. اللہ خیر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل میں آسانیاں عطا فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کو جو آمد ماہ رمضان قریب ہے، اس میں ہم سب کے لیے عبادات مسجدوں کا اور مقامات مقدسہ کا دروازہ اللہ کرے کھل جائے، اور اس آزمائش سے ہم سب نکل آئیں. آج ہم نے آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے. جب میں نے آج آپ کے تمام سوالات کو بہت غور سے پڑھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو کل کا میں نے آپ سے کہا تھا، اور کل یاد ہے نا آپ سب کو، کلاس کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کلاس آگے ہم رکھیں، اور میں نے ایک موضوع بھی دیا تھا. تو میرے خیال میں جہاں تک ہمیں میسج میرے واٹس ایپ پہ آئے، پرسنل نمبر پہ آئے، تو وہ تقریباً 1000+ یس تھے، کہ کچھ مائیں ایسی تھی، کچھ برادران ایسے تھے جنہوں نے بہت ہی محبت بھرے جملوں میں کہا اس کلاس کو آپ ختم مت کریں، اسے آپ آگے اس کا سلسلہ جاری رکھیں. بے شک میرا اپنا ارادہ بھی یہی تھا کہ ہم اس کو بھی میسج کیا، کوارنٹائن ٹائم نہیں ہے بلکہ قرآن ٹائم ہے. اس جملے نے میرے اندر بہت زیادہ انرجی دی. بے شک میں نے اس سلسلے کو انشاءاللہ آپ سب کی مدد سے آگے لے کر چلنا ہے، اور اللہ ہماری ٹیم کو جو ٹائم پہ سب کچھ مینج کرتے ہیں، اور آپ کو پتا یہ سلسلہ گھر سے ہی چلتا ہے، ٹیم اگر انوالو نہ ہو، ٹیم کی انتھک محنت نہ ہو، تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ٹیم ہمارے ساتھ دے گی، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. آج سوالوں کا جواب دینا تھا ہم نے. جب میں نے سوالوں کے آپ کے دیکھے، تقریباً 900+ آپ کے سوالات ہیں، جن میں سے بہت سارے سوالات جوائنٹ فیملی، جادو، گھر میں ناچاکیاں، میاں بیوی کے درمیان اختلاف، اس طرح کے سوالات بہت زیادہ تھے. اور کچھ سوالات قرآنی اور علمی تھے، جسے دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ میرے عزیز بہن بھائیوں نے جو سوالات کیے تھے، یہ وہ سوالات تھے جو میرا اپنا دل کرتا تھا یہ ہم اس رتبے تک پہنچ جائیں کہ ہم قرآن کے بارے میں سوچیں، قرآن سے سوالات نکالیں اور اس پہ غور و فکر کریں. تو الحمدللہ آپ کے سوالوں نے میرے اندر امید کی کرن جاری کی، یعنی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ قرآن سے مانوس ہو رہے ہیں اور قرآنوں میں سے سوالات نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سوال جو ابھی میں نے جواب دینا ہے، جنہوں نے روح الیقین کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ ریڈی ہیں کیا؟ میں سامنے سکرین پہ دیکھ رہی ہوں، اور دائیں میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے جس میں آپ کے سوالات میرے سامنے ہوں گے، اور میں نے ان سوالات کا پڑھتے ہوئے جواب دینا ہے. جنہوں نے مجھ سے روح الیقین کے بارے میں پوچھا تھا، وہ میری پیاری بہنیں بچے موجود ہیں یا نہیں اس وقت؟ بیٹا اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دو، کیونکہ مجھے خود بھی نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ہمارے سسٹم کا میرے خیال میں تھوڑا سا ایسر، سسٹم میں تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو کلیئر کر دے میرے لیے، تاکہ مجھے خود بھی اندازہ ہو کہ سب صحیح جا رہا ہے. اوکے ڈن. آج میرا روزہ نہیں تھا، میں چائے رکھ کے بیٹھی ہوں. جیسے کلاس میں سب کو پتا ہے چائے تو رکھی ہوتی ہے، مجھے پینے کا ٹائم نہیں ہوتا. آج آزماتے ہیں یہ سلسلہ آن لائن کیسے ہوتا ہے، پی سکتے ہیں یا نہیں. اگر کسی نے چائے لینی ہو تو آ سکتے ہیں ست ہماری طرح. جی جناب، جنہوں نے روح الیقین کے بارے میں سوال کیا تھا، سنیے سب سے پہلے یہ سوال اس کا جواب دوں، کیونکہ میرے پرسنل نمبر پہ بھی ان سوالوں کا بہت زیادہ تڑپ تھی لوگوں کو جاننے کی. حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آخر الزمانہ کے لوگ اگر اپنے دین کی محافظت کریں، اللہ انہیں عین الیقین کے درجے تک پہنچاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام और हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहि सलाम से सवाल हुआ, मौला ये ऐनुल यकीन रूहुल यकीन किसे कहते हैं? आपने तशरीह फरमाई, फरमाया चंद किस्में हैं, रूहुल हरका, हर चीज में हरकत है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो नबातात हो, आज साइंस ने प्रूफ दिया कि हर चीज हरकत में, रूहुल हरका पहला स्टेप है। और हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज, जमीन आसमान में जो कुछ है जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह करता है। रूहुल हरकत के बाद अगला स्टेप रूहुल हयात है, रूहुल हयात भी जमादात और नबातात में मौजूद है। रूहुल हयात के बाद अगला मरहला रूहुल शहवा है। शहवत किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, उसको ज्यादा मैं तौज़ीह ना दूं इसके बारे में। ये तीन रूह, रूहुल हरका, रूहुल हयात, रूहुल शहवा, ये तीन चीजें जमादात और नबातात में। अगर अशरफुल मखलूकात जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क करके इंसान को जब खल्क किया फरमाया अशरफुल मखलूकात है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक बंदों को देखकर रश किया और फरमाया फतबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, मुझ अल्लाह पर मुबारक हो, मैंने बेहतरीन मखलूक बनाया। अब ये इंसान जो अशरफुल मखलूकात बनने की सलाहियत रखता है, ये इंसान जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने खल्क करने के बाद अपने आप को मुबारकबाद दी, अगर ये इंसान रूहुल हरका, रूहुल हयात और रूहुल शहवत तक रह जाए, इसके अगले स्टेप पे ना आए, अगले स्टेप क्या है, चौथा मरहला रूहुल ईमान और पांचवा मरहला रूहुल यकीन और छठा मरहला रूहुल मुतहरा है। अगर इंसान अल्लाह के बंदे रूहुल हरका, रूहुल हयात और रूहुल शहवा इन तीन चीजों से ऊपर ना आए तो कयामत के दिन ये लोग जानवरों की सूरत में, खंजीर की सूरत में, बंदर कुत्तों की सूरत में मशहूर होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वकूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम के ईंधन क्या है, पत्थर ईंधन बनेगा, यानी पत्थर से आग जलेगी, और दूसरी चीज जो जहन्नम का ईंधन है नास लोग, खुद इंसान जहन्नम में आग का ईंधन बनेगा। कौन से इंसान जो इन तीन मरहलों से ऊपर नहीं आए। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गैर मोमिन, जो मोमिन नहीं वो इन तीन मरहलों में रह जाता है, और जो मोमिन होता है अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है, अल्लाह रसूल को भी मानता है और अल्लाह रसूल की भी मानता है, वो रूहुल ईमान का दर्जा है कि वो ईमान के दर्जे पे फाइज होता है। और इन चंद दर्जों में आला तरीन दर्जा रूहुल यकीन है जो किसी किसी को नसीब होता है। और आखिरी दर्जा जिसका जिक्र किया रूहुल मुतहरा, हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये रूह मुतहरा सिर्फ और सिर्फ मासूम के पास है, गैर मासूम के पास नहीं। सवाल हुआ मौला रूह मुतहरा क्या है, फरमाया ये नूर का एक सुतून है जो मासूम के कल्ब से लेकर, मासूम के दिल से लेकर अर्श इलाही तक जाता है। बस आखिरी मरहले तक हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन आम इंसानों के लिए, गैर मासूम के लिए आला तरीन दर्जा रूहुल यकीन है। अब आखिर जमाना के लोग रूहुल यकीन उस मंजिल में राज तक क्यों पहुंचेंगे, इसका जवाब भी नबी करीम ने दिया। फरमाते हैं आखिर जमाना में तुम्हें लोग नहीं मिलेंगे, गौर से सुनिए, जिनको इस सवाल का जवाब लेने का बहुत दिलचस्पी थी, गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिर उस जमाना में तुम्हें वो लोग नहीं मिलेंगे मगर ये कि या उन्होंने सूद खाया हो, या सूद दिया हो, या सूद लिया हो, या सूद का कोई ना कोई गर्दो गुबार उनकी जिंदगी, आखिर जमाना में तुम्हें सूद से पाक लोग बहुत कम मिलेंगे। फिर कुरान की आयत अस्साबिकून अस्साबिकून सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखरीन, आखरीन में से बहुत कम लोग होंगे जो साबिकून में कहलाएंगे। या रसूल अल्लाह, या हजरत अमीर उल मोमिनीन, या हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम, आखिर क्या वजह है आखिर उस जमाना में रूहुल यकीन तक पहुंचना, जो मोमिन होंगे वो रूहुल यकीन तक पहुंचेंगे क्यों? जवाब यूं दिया, आखिर उस जमाना में गुनाह इंसान की हथेली में होगा और हथेली में जो गुनाह है उसे इग्नोर करके मोमिन रहना आखिर जमाना में मुश्किल तरीन काम है। फिर फरमाया आखिर जमाना में दीनदार रहना ऐसा ही जैसे आग के अंगारे मुट्ठी में रखा। हम देखते हैं इन अहादीस को, इन आयात को जब हम जोड़ते हैं आपस में तो अंदाजा होता है बात बिल्कुल सही है। आज जो गुनाह का दायरा इतना वसी है कि गुनाह के लिए हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, गुनाह के लिए ज्यादा पैसे लगाने भी नहीं पड़ते, गुनाह हथेलियों के अंदर आ गया। ऐसे मरहले में जैसे फरमाया आखिर जमाना में तरके गुनाह मुश्किल तरीन काम होगा और जो इस मर्तबे तक पहुंच जाए अल्लाह उसे ऐनुल यकीन रूहुल यकीन का रुतबा अता करता है। अल्लाह करे हम आखिर जमाना के मोमिन, आखिर जमाना के रूहुल यकीन तक पहुंचने वाले साबित कदम अंसार आवान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में शुमार हों। आमीन सुमा। अब चलते हैं हम अगले सवालों की तरफ। जी जनाब, आपके सवाल पहुंचे क्या? अच्छा, ओके, सवालात खान मैं सवालात पढ़ रही हूँ, ठीक है? आपके थोड़ा सा टाइम मुझे देंगी ना आज? ओके, आपको तफसीर कुरान के बारे में बुक्स चाहिए? ओके ओके। और कुमेल रजा का सवाल क्या था जनाब, कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए? अच्छा, अभी सवाल आया हम इस दौर में सूद से कैसे बचे, ऐसे ही है? सूद से कैसे बचें? पहले मुझे ये बताइए सूद के बारे में पता है? सूद किसे कहते हैं? सूद के अहकामात पढ़ा है? नबी मुरसल सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से रिवायत है, अगर तुम कोई भी काम करो, कोई भी काम, उस काम को सबसे पहले दीन और शरीयत के सांचे में उसके उसूल और जवाबित को सीखो, ठीक है? जैसे सवाल हुआ मौला मैं तिजारत करना चाहता हूँ, कहा क्या तुम्हें तिजारत के उसूल का पता है? शरीयत में उस तिजारत किसे कहते हैं पता है? जब तक शरीयत में तुम उसूल ना सीखो तिजारत के, तब तक तुम तिजारत शुरू ना करो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को आपने कभी दीन में भी तोला है? जी कभी आपने जो डॉक्टर बनना चाह रहे थे आप डॉक्टर बन गए, कामयाब डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपने फील्ड के बारे में कुरान अहले बैत से पूछा है? हम कोई भी काम करें, चाहे वो दुनियावी काम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दुनियावी काम उखरवी काम में कोई फर्क नहीं है, जो हम यहाँ करते हैं उसी का सिला हम यहाँ भी लेते हैं वहां भी लेते हैं। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले आप देखें शरीयत ने उसके बारे में क्या कहा है। पहला सवाल ये है सूद के बारे में आप जानते हैं या नहीं? अगर हम सूद के बारे में जानते हैं तो मैं उनका जवाब दूं, अगर हमें सूद का ही नहीं पता तो फिर हमें पहले सूद के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा। सूद किसे कहते हैं, शरीयत ने किन किन चीजों के बारे में सूद का लफ्ज इस्तेमाल किया और इससे बचने का तरीका क्या है, ठीक हो गया? अच्छा आगे सर, अच्छा बच्चों की बेहतरीन तरबियत के एक अहम तरीका बताएं। ओके, बच्चों की तरबियत के लिए मेरे बच्चे, देखिए मेरी जान, मेरे अजीज बहने, अजीज भाई, जिन्हें बहुत टेंशन है, मुझ समेत हम सबकी टेंशन है कि अल्लाह हमारे औलाद को औलाद सालिहा करार दे और इनको नेक औलाद, बेहतरीन औलाद बनाने की हमें तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन जो तरीका है ना बेटा, पहला उसूल ये है, अपने गुस्से पे काबू पाए, बस बेहतरीन तरीका है। कल किसी बहुत प्यारी सी माँ ने मुझे कहा, लात के भूत प्यार नहीं समझते। मैंने कहा जब हमने बच्चों को लात के आदि कर दिया तो फिर तो लात के भूत ही होते हैं ना। बच्चे बेहतरीन रूह, पाकीज़ा तरीन रूह, और जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इस कदर बुलंदी है, उसका रूह इस कदर पाक होता है, बहुत बड़ा रूह उसके छोटे से जिस्म में होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, जब बच्चा 4 महीने के पेट में होता है, माँ के पेट में, रब फरमाता है नफख्त फीहि मिन रूही, मैं अपने रूह उसके अंदर फूंक देता हूँ। यही वजह है जब बच्चा छोटा होता है वाकई सच्चा होता है। छोटे बच्चों को हम कहते हैं मासूम है, ऐसे ही वो आर्टिफिशियल चीजों से खुश नहीं होता, वो सच्चा बच्चा जो जो बड़ा होता है, जिस्म उसका बड़ा होता है, रूह उसकी छोटी रह जाती है। रूह को हम दबा देते हैं, जिस्म उसका बढ़ता है। पाक पाकीजा कमाल वाले रूह के बच्चे की अगर सही तरबियत करें तो ये यकीनन इसको लातों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने लातों के आदि बना भी दिया है तो मेहरबानी फरमाइए, अपने गुस्से पे काबू पाइए और इजहार मोहब्बत कीजिए, इससे बहुत सारे मसले आपके हल होंगे। और सवालात को जरा रोकना बेटा। बच्चों में नमाज का शौक कैसे डालें? बहुत अच्छा सवाल है ये भी, बच्चों में नमाज का शौक डालने का। देखिए बेटा, हमें खुद नमाजी होना चाहिए, ठीक है। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब नमाज का टाइम होता है, घर का माहौल सुकून कर रखें। अगली बात, जब साथ ये सवाल भी है मेरे ख्याल में, बच्चों को हम क्या करें वो तहज्जुद के आदि हो जाए। सवालों की बारिश है इस वक्त। अच्छा, 1 घंटे में तो इनके में जवाब कंप्लीट होंगे क्या? मुझे नहीं लगता 1 घंटे में इनके जवाब पूरे हो सके। नमाज के टाइम घर के माहौल को पुरसकून माहौल बनाइए, और अगर आप खुद तहज्जुद पे उठते हैं, आप खुद नमाज के वक्त लबों पे मुस्कुराहट है, जाए नमाज बिछा के, बेटा मैंने नमाज पढ़ना है, आप खुद नमाज के साथ मोहब्बत का इजहार करें तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी नमाजी होंगे। और बच्चों से रात को सोने से पहले उनके कमरे में जाइए, अगर बच्चे आपके पास होते हैं, थोड़ी देर अपने बच्चों के पास लेट कर उनके माथे पे प्यार करें, उनके सर पे हाथ फेरें और पूछे उनसे, बेटा फजर में जगा दूं ना तुम्हें, बेटा नमाज फजर कजा ना हो, बेटा आज नमाज पढ़ी थी ना, बेटा तुम्हें मालूम है वो बातें जो आप बहुत, जैसे कल के मौजू में भी था, मुस्बत पॉजिटिव करके जुमले बयान करें और वालदेन हौसला करें, हिम्मत करें, एकदम रिजल्ट नहीं मिलता, टाइम लगता है रिजल्ट आने में। मैंने जैतून के दरख्त की मिसाल दी थी, आप मेहनत करें, मोहब्बत, गुस्से को काबू पाना, अपनी नमाज अव्वल वक्त, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आदि होंगे। और आए मुबारका रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये आए करीमा, और रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन व जअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये वाली आयत। और सूरह क़सस की गालिबन आयत नंबर 15, सूरह कसस की आयत नंबर, बेटा मुझे कुरान देना जरा, सूरह कसस की आयत नंबर गालिबन 15 ही है, वो कसरत से पढ़ें। रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतिकल्लती अनअमत अलैह, ये वाली आयत है, देखिएगा कुरान में ये वाली आयत कसरत से तिलावत करें। ये वो आयात हैं जिसके सदक़े अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत, नमाज, कुरान की तौफीक देगा। ओके, चलते हैं हम आगे, आंसर क्वेश्चन। ओके ओके ओके, मैं सवालात आपके पढ़ रही हूँ। हाँ, ओके। मकतबे तशय्यो के मुताबिक, हम शिया हजरात के मजहब के मुताबिक, नमाज का टाइम क्या है? जो ही जोहरेन का टाइम शुरू हुआ, यानी अजान जोहर हुई, अजान जोहर के फौरन बाद जोहर की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। जो ही आपने जोहर की 4 रकात नमाज खत्म की, اس کے فوراً بعد اثر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور اثر کی فضیلت کا ٹائم وہی اثر والا وقت ہے، لیکن نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم علیہ نے نمازیں کٹھی بھی پڑھی ہیں، الگ الگ سے بھی پڑھی ہیں. اگر آپ کٹھا پڑھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ درمیان میں فاصلہ دینا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. اثر کا وقت یا عشاء کا وقت، مغرب کے فوراً بعد نماز 3 رکعت ختم، عشاء کا وقت شروع ہوا، 4 رکعت نماز ظہر ختم، عصر کا وقت شروع ہوا مکتب تشیع کے مطابق. اچھا جناب، بچوں کی تربیت والا بھی ہو گیا، یہ نماز والا بھی ہو گیا. بیٹا اس کو تھوڑا نیچے لے آؤ. اوکے، اچھا کہا کہ شیاطین کو 7 کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ مجھے تھا اس کا جواب آپ مجھے بتا دیں تو صحیح. 7 قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہوا؟ 7 کا عدد جیسے کہا جاتا ہے آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، ایسے ہی سورہ الحمد 7 مرتبہ پڑھیں، یا آپ شیطان کو 7 مرتبہ کنکریاں مارتے ہیں، یا اللہ فرماتے ہیں آسمان کے کتنے طبقات ہیں، 7 کیوں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے تھوڑا سا پاپڑ آپ نے بھی بیلنا ہے، تھوڑی سی محنت کر لیں، ورنہ آگے دنوں میں جواب دوں گی. دیکھیں 7, 40 یا 72، یہ وہ چیزیں جو اکثر ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں میقات پہ. جب وہ گئے تو اللہ نے 10 دن بڑھا دیا، وہ جو 10 دن بڑھا دیا وہ ذلحج کے 10 دن ہیں. ایسا ہی زیقات کے 1st ڈے کو گئے، ذلحج کے 10 کو آپ واپس آئے، 30 دن کا کہہ کے گئے، 10 دن بڑھا دیا، تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 40. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے عرصہ رہے؟ کچھ عادات قرآن نے خود کوڈ بتایا ہے. سورہ الحمد کتنی آیتیں ہیں؟ 7. کچھ تھوڑا آپ سوچیں تو صحیح، جواب دوں گی میں لیکن تھوڑا آپ بھی محنت کریں. اچھا اچھا، میں نے امام خمینی کے بیٹی کے حوالے سے قصہ سنایا تھا، آگے وہ میں نے سنایا تھا، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے آدھا سوال کیا بیٹا، اگلا سوال میں نے سنایا تھا، تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کو میں ریپیٹ کروں یا کیا بتائیے، مجھے سمجھا دیجئے مجھے کیا کرنا ہے. میں آپ کو دوبارہ کہنا تو دوبارہ بتا دوں. اور آگے بیٹا سوالات کو لے آؤں آگے سارا. اور بہت سارے سوالات جو اس وقت میرے پاس آپ کے گزشتہ لیکچر نمبر 1, 2, 3 سے لے کر 10ویں کلاس تک کے جو سوالات تھے، ان سوالات میں سے تقریباً 99% سوالات جادو کے بارے میں، جادو کا توڑ کیسے کریں، جوائنٹ فیملی کے مسئلے کیسے حل ہوں، میرے ساس سسر کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، مجھ میں اور میرے شوہر میں، میرے نندے، میرے بہن بھائی، یا یہ ایک لڑائی والی فضا ہے، اس کے لیے بتائیں. اور سب نے ایک بات کی، خانم میں کیا کروں میرے گھر کے ماحول اچھا ہو دعا بتائیں، اچھا خانم میں کیا کروں میرے ساس کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو مجھے کوئی دعا بتائیں، خانم میں کیا کروں میری بہو کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو مجھے کوئی دعا بتائیں. وہ والدین جو انصاف نہیں کرتے اس دن سے ڈریں اگر ماں باپ دعائیں پڑھنے لگ جائیں، یا آپ کی بہویں دعائیں پڑھنے لگ جائیں، اگر وہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچ گئی تو کوئی بھی اللہ کے عقاب سے بچا نہیں سکتا. میں نے ابھی دعا کسی کو نہیں دی، میں اس پہ مکمل تفصیل کے ساتھ اگلے دنوں میں لیکچر دوں گی، کیونکہ مجھے سوالوں سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے نیچے کیسے لا. اوکے، تو مجھے اندازہ ہوا، یہ سوالوں سے اندازہ ہوا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے. دوسری طرف سے ہم سب پوچھتے ہیں ہم کیا کریں 313 میں شامل ہوں، ہم کیا کریں مولا ہم سے راضی ہوں. جناب ہم گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو باہر کیسے کریں گے؟ جناب اگر ہم اپنے بیٹیوں میں، بہوؤں میں، بیٹوں میں انصاف نہیں کر پائے تو ہم مولا کے لشکر میں، یار سوچنے والی بات ہے نا. تھوڑا سا اس پہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، آگے چلتے ہیں. اوکے मैं सवालात पढ़ रही हूँ आपके यहाँ। अच्छा माशाल्लाह, सवालों की तो बारिश है। अच्छा इमाम खुमैनी की बेटी वाला वाकया दोबारा सुना दूं? ओके बेटा जरा रुको, बाकी सवालात के जवाब दूं तो कोशिश करूंगी एंड पे सुना दूं बेटा। अच्छा सवाल है, सवाल तो सवाल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हुए और कुछ लोग खाने काबा का तवाफ करते रहे, तो क्या इनका हज हुआ या नहीं? हज हुआ या नहीं ये तो फैसला अल्लाह करेगा, ठीक हो गया। दूसरी बात, जनाब सैयदा फरमाती हैं, जनाब रसूलुल्लाह से रिवायत मनकूल फरमाती हैं, मेरे बाबा ने फरमाया है मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबा जैसी है। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यकीनन कोई ना कोई हिकमत थी, अल्लाह ने किसी नबी को किसी नबी के मकाम विलादत को अपना घर नहीं ठहराया। तारीख शिया सुन्नी तमाम तारीख में जिक्र है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खाने काबा के अंदर उनकी विलादत हुई और इमामत का सिलसिला जो शुरू हुआ इमाम अव्वल हजरत अली अलैहिस्सलाम और इमाम आखिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, इमामत का आगाज अल्लाह ने काबा के अंदर से ही किया जहां तक हम सब जानते हैं, और इसमें शिया सुन्नी कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर मुसलमान इमाम को छोड़कर सिर्फ काबा का तवाफ करते रहे, और बीवी दूसरी जगह फरमाती इमाम की मिसाल काबा जैसी है, तो काबा को बचाने वाले का नाम इमाम। हक ये था इमाम की आवाज से मुसलमान लब्बैक कहते। और ये कुमेल बेटा जो तुमने सवाल किया है, ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है, ठीक है, इसलिए पेचीदा है, इसका जवाब मैं तारीख से दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना हज उम्रे में क्यों बदला, ठीक है, और उम्रे पे बदल के आपने हज मुकम्मल किए बगैर आप करबला की तरफ क्यों रवाना हुए? क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम को खबर हो चुकी थी कुछ लोग, अब ये बातें सवालात, अभी रुको बेटी बच्चे रुक जाओ, इस सवाल को इस जवाब को बहुत गौर से सुनो बेटा। ये मैं आपको बता रही हूँ, जो रिसर्च होता है या बैठ के हम मुतालिया करते हैं तो शायद सैकड़ों किताबें जिसमें अहले सुन्नत अहले तशय्यो और यहूदियों की किताबें ईसाइयों की किताबें, इन तमाम किताबों को बैठकर हम पढ़ते हैं बेटा, रिसर्च में शायद हजारों किताबों के सफ़े खुलते हैं और नचोड़ आपको दिया जाता है, इसलिए ये वाली बात गौर से सुनिए। इमाम अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि कुछ लोग खाने काबा के तवाफ के दौरान अपने एहराम के नीचे तलवार छुपाए हुए हैं, और जब इमाम को खबर हुई और ये तलवारें लेकर कौन आए थे, साजिश क्या थी, ये तारीख सबको मालूम है कि ऑर्डर ये था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दौरान तवाफ शहीद कर दिया जाए। और तवाफ के दौरान, ये हिस्ट्री बता रही हूँ, तवाफ के दौरान दो तरह के लोग थे, गौर से सुनिए। एक ग्रोह वो था और दोनों को नहीं पता था, दोनों ग्रोह को ये मालूम नहीं था ये दूसरा ग्रोह मेरे साथ है या पहला ग्रोह मेरे साथ है। दो अलग एजेंडे थे, एक टीम को कहा गया था हुसैन को शहीद करना, दूसरे टीम को कहा गया था जो हुसैन को शहीद करे तुमने उसको मार। इससे होना क्या था, एक टीम इमाम हुसैन को शहीद करती जो तलवार एहराम के नीचे लेकर आए थे, दूसरे लोग इनको मारते और दुनिया में एक आवाज उठती कुछ मुनाफिक थे कुछ शरपसंद लोग थे हमने उसको मार दिया, बात वहीं लिपट के खत्म हो जाती और इमाम हुसैन के कातिलों का अंदाजा ना होता कि कातिलीन हुसैन कौन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जमाने के हुक्मरानों की साजिशों को बेनकाब करने के लिए, शहादत तो हमारा मुकद्दर है लेकिन अगर मैं शहीद भी हुआ, मेरे बाबा शहीद हुए, कातिलों का नाम कहाँ है, मेरे भाई हसन मुश्तबा शहीद हुए, मेरे भाई हसन मुश्तबा को शहीद किसने किया, जोदा जैसी मलऊना ने, और जोदा को जहर किसने पहुंचाया, क्यों नहीं बताया जाता है? आज खुल के तो हम ये बात नहीं करते ना, हम सबको मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरादा ये था कि मैंने तो शहीद होना है, मैं ऐसी जगह जाकर शहीद होऊंगा, तुम चाहो भी तो मेरे कातिलों पे दुश्मनान अहले बैत तुम पर्दा नहीं डाल सकोगे और कभी भी उनके इस जुर्म को छुपा नहीं सकोगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये जो तलवार नयामों में और तलवार अहरामों के अंदर था शहादत को करबला में मुंतकिल किया। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये तवाफ करने वाले किस तरह के लोग थे, किस तरह के लोग थे। जब जमाने के इमाम ये कह रहे हैं, नवासे रसूल ये कह रहे हैं, पंजतन की आखिरी कड़ी ये कह रहे हैं कि मैंने करबला की तरफ रवाना होना है, जिन्होंने लब्बैक कहा, 14 सदियां गुजर गई उन पर सलाम है, ता कयाम कयामत तक उन पर सलाम होगा, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। और जिन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम को, जमाने के इमाम को, जमाने के किसी भी जमाने के नबी को, चाहे वो हजरत नूह हो चाहे वो नबी करीम हो, जिन्होंने अल्लाह के वलियों पे लब्बैक नहीं कहा, कुरान ने उनके बारे में फैसला सुना दिया। क्लियर हो गया बेटा? अब हम चलते हैं आगे जनाब सवालात। अच्छा लग रहा है आज मुझे, मुझे मैं इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग बताइए कितने लोग, अच्छा माशाल्लाह लोग भी काफी इस वक्त बैठे हुए। ओके, नहीं मैं आपको इंशाल्लाह इमाम खुमैनी वाला किस्सा बताऊंगी। अच्छा, क्या इसके आखिरी जमाने से कोई लिंक है? जी, आजकल जो मसाजिद बंद है, हरम बंद है, ठीक है, इसका कोई लिंक है आखिर जमाना से? यानी देखो बेटे, आखिर जमाना अगर हम कहें, अपने जमाने को आखिर जमाना कहें, तो हमने गलत बात नहीं की, ठीक है। आखिर जमाना से मुराद है ना, यहाँ इमाम के जहूर से कोई मुराद नहीं, आखिर जमाना। जो हमारी रिसर्च है मकतब तशय्यो, मकतब अहले सुन्नत की, जब हमने रिसर्च किया तो हमें अब तक जो अंदाजा हुआ 1200 निशानियां हैं जो आखिर जमाना की निशानियां, जहूर से कबल की निशानियां, उनमें से तकरीबन 1190 निशानियां पूरी हो चुकी। कुछ निशानियां हैं जो अभी रहती हैं और कुछ निशानियां ऐसी हैं जो होती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये मसाजिद का बंद होना जी आखिर जमाना की निशानियां तो हैं? आप ये बताइए, सदर इस्लाम से लेकर अब तक दुनिया ने कभी इस जो जिस मोड़ पे आज खड़ा है, कभी दुनिया ने ये टाइम देखा था? आप बताइए, कभी ऐसा हुआ? अब क्वारंटाइन की वजह से मसाजिद भी बंद, इमाम बारगाहें भी बंद और दरगाहें सब बंद हो गई। क्वारंटाइन के बाद मामलात कहाँ जाएंगे, उसके बाद की दुनिया क्या होगी, उसमें मैं एक लेक्चर दूंगी इंशाल्लाह, वो मैं आपको दिन भी बता दूंगी। क्वारंटाइन खत्म होने के बाद दुनिया कहाँ खड़ी होगी, दुनिया किस नहज पे होगी, दुनिया एक नया रुख इख्तियार करेगी या नहीं, पूरा एक लेक्चर घंटे का इस पे होगा और हम इंशाल्लाह आपको टाइम भी बता देंगे। अब दूसरी तरफ मकामात मुकद्दसा बंद हो गए, ऐसे ही है ना, और मसाजिद बंद हो गए। हमने मसाजिद मकामात मुकद्दसा अगर वक्ती तौर पे बंद हुआ, उससे हमने दुनिया वालों को बता दिया, दीन और सियासत, दीन और इल्म में कोई जुदाई नहीं है, दीन और इल्म एक है। अब तक जमाने में जिसने ये सवाल किया है, यकीनन थोड़ा सा वो गौर से सुनना बेटा ये वाला सवाल, और जिन्होंने ये सवाल पढ़ा वो भी गौर से सुने। हमेशा एक दीन पे हमला होता रहा, दीन सियासत से जुदा है, दीन इल्म से जुदा है, दीन दीन ही है ना, जो दीनी होते हैं उनको आप बिल्कुल ही एक साइड पे लगा देते हैं। आज चाहे वो मकामात मुकद्दसा हो चाहे कुछ भी, दुनिया को बता दिया दीन और इल्म जुदा नहीं है। अगर आज इल्म ने ये साबित कर दिया कि लोगों के इज्तमा से ये वबा फैल सकती है, तो आज के उलमाए हक्का ने, तमाम दुनिया के उलमा ने फैसला किया कि इंसानों का जान बचाना जरूरी है। और इसके पीछे, इस वाकयात के पीछे किन के हाथ हैं, इनसे कौन फायदा उठा रहा है, वो क्या चाहते हैं, उसके बारे में इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा, उसमें हम आपको जवाब देंगे। और कुछ लोग कहते हैं जनाब आप लोगों ने, ये आपका सवाल इसमें नहीं है, पिछले दिनों था, कि हम तो हरम से मसाजिद से हम शिफा लेते हैं तो हमने इसको बंद क्यों कर दिया, हम दरगाहों में जाते हैं तो हम दरगाहों को चूमते हैं, अदब से बोसा लेते हैं, आपने बंद क्यों कर दिया? देखो मेरा बेटा, अगर कहीं पर खुदकुश हो किसी मस्जिद में किसी बारगाह में, अगर बॉम्ब रखा हो, आप वहां बैठे रहेंगे या निकल जाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ। जाहिर सी बात है, जान बचाना वाजिब है, हरम बचाना वाजिब है, बारगाह बचाना वाजिब है, बॉम्ब को वहां से निकाल के जगह को महफूज करना फर्ज है। इसी तरह ये वायरस छोटा सा एक वायरस है जो नजर भी नहीं आता, अगर ये कहीं भी होने से, किसी भी शख्स पे होने से दूसरे लोगों तक ये वबा फैल सकती है, हरम को बचाना, लोगों को बचाना हम सब पर फर्ज है। क्या ये आखिर जमाना की निशानी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। दुनिया ने कभी ऐसे नहज पे दुनिया आया ही कब था। आज पूरी दुनिया कहती है काश कोई एक लीडर हो जो हम सबको गाइड करे। अल्लाह ने, देखिए दुआ नुतबा में हम पढ़ते हैं, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से इस्तगासा करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हें मजबूर कर दे गिड़गिड़ाने पे। आज के जमाने में अल्लाह ने सब इंसानों को, तमाम इंसानों को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। आज मसीही भी रो रहे हैं, सब भी रो रहे हैं और अल्लाह से निजात मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आखिर जमाना की निशानियां हैं। मेरा सवाल जी आपके, तफसीर में कुरानी तफसीर, देखो बेटा तफसीर अल मीजान, तफसीर बुरहान, तफसीर नमूना, तफसीर नूर, ये वो तफासीर हैं जो जिससे हम इस्तफादा करते हैं। आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप दिन में एक सफा कुरान का, एक सफा सिर्फ तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ने लग जाए, बाकी खुद कुरान उस्ताद है, खुद कुरान हिदायत है, ये कुरान खुद आपको आपके सवालों का जवाब देगा। अब एक मरतबा कुरान की बारगाह में जाएं तो सही। मेरे अच्छा जनाब, किसी ने सवाल किया आयतुल्लाह खुमैनी को आप इमाम क्यों कहते हैं, ऐसे ये सवाल यही है ना, देखिए जरा जी। इमाम खुमैनी क्यों कहा जाता है? देखो बेटा, इमाम के माना क्या है, पेशवा, लीडर, रहबर। हम इमाम मस्जिद को क्या कहते हैं? इमाम। इमाम काबा को क्या कहते हैं? इमाम। जो जनाजा पढ़ा रहे हैं मौलाना साहब, उसे क्या कहते हैं? इमाम। इमाम पेशवा लीडर को कहते हैं। अगर कोई पेशवा, कोई लीडर पूरी दुनिया को हिला दे, हाँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ला शर्किया वला गर्बिया, ना शर्की ना गर्बी, सिर्फ दीन मुस्तफा की आवाज बुलंद करे, और अगर कोई लीडर ऐसा हो जो मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम की हुकूमत को कायम करे और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर तैयार करे, उनके लिए तमाम जो जरूरी वसाइल हैं वो तैयार करे और इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर के तमाम मुकदमात फराहम करे और पूरी दुनिया को हिला दे। देखिए आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में आप रिसर्च कीजिएगा बेटा, जिसने भी ये सवाल किया है, उन्होंने रशिया के जो उस वक्त सदर थे गोरबाचोव के नाम खत लिखा, खत लिख के उस खत में लिखा था उन्होंने, मैं देख रहा हूं अनकरीब रशिया टुकड़े टुकड़े होगा और तुम दुनिया के सुपर पावर नहीं रहोगे। और इस बात पे गोरबाचोव को बहुत तकलीफ हुई, 3 दिन तक उसने आयतुल्लाह खुमैनी के सवाल का जवाब नहीं दिया, तीसरे दिन जाके उसने जवाब दिया। और आपने देखा उस मर्दे कबीर, उस पेशवा, उस लीडर के जुमलों ने तारीख में साबित कर दिया, इस खत के चंद अरसे बाद आपने देखा रशिया टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर कोई लीडर दुनिया को हिला दे, अगर कोई लीडर पूरी इंसानियत के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाए, चाहे वो मजलूम फलस्तीन में हो, चाहे वो मजलूम कश्मीर में हो, चाहे वो मजलूम दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर कोई लीडर दुनिया को हिला दे, अगर किसी लीडर के हुक्म से माह मुबारक रमजान के आखिरी जुमा मुस्तज़फीन आलम, जमाने के मजलूमों के, जमाने के मजलूम फलस्तीनियों के नाम पे, उनके हक पे आवाज उठाने का हुक्म दे, और ऐसा लीडर जिसके सामने मजहब का कोई तफरीक नहीं है, कहीं भी कोई मजलूम हो, चाहे वो मजलूम किसी भी मसलक का हो, हम उसके साथ देंगे। अगर ऐसा कोई लीडर दुनिया में आ जाए और उसको अगर हम पेशवा लीडर के तौर पे इमाम कहें, तो इसमें आप बताइए कोई कबाहत है? कबाहत है तो आप बताइए। हम इमाम काबा भी तो कहते हैं ना, इमाम मस्जिद भी तो कहते हैं ना। इमाम मस्जिद चंद लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, इमाम काबा दिन में 4 मरतबा सॉरी 5 मरतबा या हज वाले दिन नमाज पढ़ाते हैं, उनको आपने इमाम तो कह दिया। क्या पूरी दुनिया को अमन का पैगाम और पूरी दुनिया को जहूर के रास्ते पे जो लगा रहे हैं, उन्हें लफ्ज इमाम कहने से कोई मसला है? तो आप बता दीजिए। इमाम लीडर को कहते हैं, और आयतुल्ला खुमैनी जैसा लीडर गैबत सुगरा से लेकर अब तक, माजरत गैबत कुबरा से लेकर अब तक कोई ऐसा लीडर आप बताइए कोई आया? आज हम देखते हैं इस आयतुल्ला खुमैनी के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने पर हैं। इब्राहिम ज़ाकज़ाकी उनके चाहने वाले, हसन नसरुल्ला उनके चाहने वाले, और आप सब जो बैठे हुए, आप सब जो हक की आवाज बुलंद करने की आज हमें जुरअत मिली है, और जगह जगह हम जुरअत के साथ इमाम हुसैन का नाम बुलंद करते हैं और जुरअत के साथ जुलूस निकालते हैं। और आज अगर मकतब तशय्यो को जुरअत मिली है, तो आप बताइए जुरअत हमें किसने दी? क्या जो आज सूरत हाल है अरबईन के हवाले से, आशुरा के हवाले से, अहले बैत के जिक्र के हवाले से, बताइए 40 साल पहले ये सब कुछ था? तो अगर कोई ऐसा लीडर हो, हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की रिवायत सुनिए बगैर किसी तासुब के। मैंने बेटा कुरान और हदीस की बात करनी है, और आप लोगों ने इंशाल्लाह बहुत कुशादा कल्बी के साथ इसको सुनना है, बाकी मौला जाने और हम सब जाने। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी नस्ल में से एक बेटा शहर कुम से उठेगा और वो हुकूमत कायम करेगा, और वो हुकूमत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जहूर से मुत्तसिल होगी। और हमने देखा सैयद रूहुल्लाह अल खुमैनी अल मूसवी, ये सादात मूसवी सादात में से हैं, और वो सिलसिला हम देख रहे हैं जो आज हम सबके सामने है। अगर आज अरबईन है तो इसी लीडर की खिदमात है ना, है या नहीं? बाकी आप खुद जरूर गौर फरमाइए। जी जनाब, आगे हम सवालों की तरफ आते हैं। अब अच्छा हो गया, लैपटॉप मेरे सामने आ गया। ओके, सवाल का तो जवाब हो गया, माशाल्लाह सवालों की तो यहाँ बारिश है। बच्चों के लिए अलबिर्रो भी पढ़ा जाता है, पढ़ने कोई हर्ज नहीं है, जिक्र खुदा जिक्र है। अच्छा, जमात के नमाज का सिलसिला, एक्सक्यूज मी, जमात के नमाज का सिलसिला, जी जमात के नमाज का सिलसिला मैं आपको बताती हूँ कहाँ से शुरू हुआ। नमाज जमात जब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि को अल्लाह की तरफ से नबूवत के ऐलान करने का हुक्म हुआ, और आप जब गार हिरा से तशरीफ लाए, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कुरान की आयतें नाजिल हुई, आपने मस्जिदुल हराम में जमात का आगाज किया। शिया सुन्नी किताबों में है, इस नमाज में सिर्फ 3 लोग शरीक थे, हजरत नबी करीम, हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, और हजरत अली इब्ने अबी तालिब। नमाज जमात का सिलसिला आगाज नबूवत से मक्का से शुरू हुआ, और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है, और इंशाल्लाह ये ता कयाम कयामत चलेगा। अच्छा जनाब, बच्चों अच्छा, बच्चों के दरमियान एक होता है कि मामा उनसे ज्यादा प्यार करती है, इनसे ज्यादा प्यार करती है। देखिए, हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, और सबकी जरूरत है, ठीक है? और मैं कभी कभी सोचती हूँ इसकी जरूरत ही क्या थी, एक अंगूठा साइड पर लगा दिया, और आप देखिए ये छोटा सा है, इसके बगैर बहुत सारे काम नहीं होते, इसके बगैर आप बटन भी बंद नहीं कर सकते, इसके बगैर आप कलम भी नहीं उठा सकते। हर उंगली अपनी जगह बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसे ही इसी तरह आपके बच्चे भी बराबर नहीं है। कोई बच्चा सेंसिटिव है, कोई बच्चा बहुत मोहब्बत चाहता है, कोई बच्चा इस कदर अना वाला होता है कि आपको जाके उसको प्यार करना होता है, वो प्यार लेता नहीं है, बल्कि बादशाह बन के बैठता है, अफसर बन के बैठता है। आप उसे प्यार भी करें, उसके नखरे भी उठाए। वालदेन को चाहिए अपने बच्चों की साइकी को समझे, कौन सा बच्चा क्या चाहता है। अगर सबको बराबर में प्यार देना, उसको भी दिया इसको भी दिया, नहीं, ये सब उंगलियां बराबर नहीं है, इस तरह बच्चों के मिजाज भी बराबर नहीं है। कुछ बच्चे छोटी सी चीज पे खुश हो जाते हैं, कुछ बच्चे बड़ी बड़ी चीजों पे, हाँ तो आपने तो करना ही था ना, कौन सा कमाल कर दिया, ऐसे ही ना। और हम फौरन कहते हैं बहन को दिया तो उन्होंने थैंक यू बोला, तुमने ये किया। भाई बच्चे बराबर नहीं होते, बच्चों की साइकी समझे और हर एक को उसकी तबीयत के मुताबिक, उसके नफ्सियात के मुताबिक, उसके जर्फ के मुताबिक उसको प्यार दे। और जब दूसरा उसूल भी याद रखिए, जब आपके घर पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, तो हम सबकी तवज्जो दूसरे बच्चे पे जाती है, पहला बच्चा इग्नोर होता है, यहाँ से जेलसी शुरू होती है। छोटा जो भी बच्चा आपका पैदा हुआ उसको तो ज्यादा पता भी नहीं होगा, इसलिए ज्यादा टाइम आप बड़े वाले बच्चे को दे। छोटा बच्चा उस वक्त उसे गोद में ले जब बड़ा बच्चा सो रहा हो, या बड़ा बच्चा जहनी तौर पे, कल्बी तौर पे आपके प्यार से सैराब हो, तब छोटे को पकड़े, ताकि बच्चों में ये जेलसी और ये बात उसे प्यार किया इसे प्यार किया ये चीजें बच्चों के जहन में ना आए। और ये जहन में रखिएगा, बहन भाइयों में हसद बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? हजरत याकूब के बेटे नबी के बेटे थे, हसद नहीं था। और हसद किस नहज तक ले गया कि अपने सगे अपने भाई को जाके कुएं में फेंक दिया। हसद बच्चों में होता है। और आपने अगर हजरत यूसुफ वाला ड्रामा देखा हो तो इस हसद के पीछे इनकी माओं का बहुत बड़ा किरदार था। रातों को बैठ के माए कानों में वसवसे शैतान के डाला करती थी। इसलिए आप बच्चों में हसद मुमकिन है, बच्चों को उनकी साइकी समझे, उनकी तबीयत के मुताबिक उन्हें प्यार दें, तो अल्लाह करे ये शिकवा घरों में ना हो। जिस बच्चे को भी ये शिकवा है आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, उसको अगर छोटा है गोद में ले, बड़ा है उसके करीब बैठे, कहें बेटा आपको कहाँ से ये लगा, जो ये कहता है ना आप उसे ज्यादा प्यार करती हैं, ये उन बच्चों में से है। इस तरह के बच्चे जो चाहते हैं बस पूरी तवज्जो हमें दी जाए, हमें देखा जाए, हमें बस हमारी तरफ ही सबकी तवज्जो हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और ये भी एक टाइम लिमिट होता है। जैसे आपको प्यास लगी है ना, फौरी पानी पिए तो आपको सुकून मिलता है, फौरी ना मिले घंटे के बाद आपकी वो प्यास मर सी जाती है। आपको भूख लगी है, फौरन आपको खाना मिले आपकी भूख मिट गई, टाइम लगा दे आपकी भूख मर सी जाती है। इसी तरह मोहब्बत का भी एक टाइम है, टाइम पे दे उसका रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। जनाब कोई सवाल इस तरह करें जिससे मुझे मजा आए ना, कि मैं अगर जोर असर की नमाज। ओके जी, अच्छा हमें अरबी समझ नहीं आती, क्या हम ताकीबात नमाज उर्दू में पढ़ सकते हैं? देखो मेरे बच्चे, ये जहन में रखो, ये जो ताकीबात नमाज है या दुआएं हैं या कुरान की आयतें हैं, ये कलाम खुदा है, कलाम महफूज। अरबी में पढ़ें, जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जो अरबी आपकी अदायगी है ना, ये कलाम महफूज है, ये कलाम खुदा है, इसका अपना असर है। अब क्या करूं कि मुझे वो ताकीबात या वो चीजें समझ आए? जो ताकीबात आप रूटीन में पढ़ते हैं, जो दुआएं आप रोजमर्रा पढ़ते हैं, चंद मरतबा उसका तर्जुमे के साथ पढ़ें। जब आप चंद मरतबा तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, उन लाइनों के तर्जुमे आपको समझ आ जाती है। उसके बाद जब आप अरबी में पढ़ते हैं, तर्जुमा आपके जहन में साथ साथ चलता है। जोहर असर की नमाज आप जोहर के अव्वल वक्त भी पढ़ सकते हैं, असर के टाइम में भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जनाब, ये सवाल रिपीट हो रहे हैं क्या? ओके ओके, एक सवाल आया, वालदेन का हक बीवी बच्चों से ज्यादा है। इस सवाल को जिसने भी किया बेटा, इसे आप पाइपलाइन पे रखिएगा, क्योंकि जब मैंने मियां बीवी के हकूक बताना है और ज्वाइंट फैमिली का बताना है, तो उसमें इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा। देखो बेटा, क्या ज्यादा है क्या कम है ये नहीं है, हर चीज को अपनी जगह रखना। हम कहते हैं इमाम अलैहि सलाम जब आएंगे तो अदल व इंसाफ करेंगे। अदल किसे कहते हैं? सबको बराबर देंगे? नहीं, अदल का मतलब ये है हर चीज को उसके मकाम पे रखना। वालदेन का हक ज्यादा है या बीवी बच्चों का? जनाब दोनों का हक ज्यादा है। वालदेन का हक अपनी जगह अदा करें, बीवी बच्चों का हक अपनी जगह अदा करें। अब वालदेन की वजह से बीवी बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते और बीवी बच्चों की वजह से कभी भी हम वालदेन को इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों के हकूक का पता होना चाहिए और दोनों के हकूक की अदायगी को कहते हैं अदल और इंसाफ। और ये तरीका कैसा है हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके ओके जनाब, पिछले सवालात तो हमारे वैसे ही रह गए। एक बहुत हमारे जिंदा दिल बच्चा है, जो भी है, उसने मुख्तलिफ सूरतों का बताया, मुख्तलिफ आयतों का, कि जिसमें किताब मालूम, कल्ब मालूम, रिस्क मालूम, मकाम मालूम, यौम मालूम, ये इसमें मुशाबहत क्या है। बेटा ये पूरे कम अज कम 3 घंटे का लेक्चर है ये, जो आपने इतने मजे से सवाल करके फारिग कर दिया। इसको मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल के साथ बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके जनाब, मैं आगे चलूं। थैंक यू जनाब, बहुत सारों ने बहुत सारी मोहब्बत भरी जुमले कहे। थैंक यू, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह हम सबको मौला के अंसार में शामिल फरमाए। ओके सवाल है, हमें कैसे पता चले इमाम अलैहिस्सलाम हमसे राजी हैं या नहीं। अपने दिल से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। अल्लाह तबारक ताला हदीस कुदसी है, कल्बुल मोमिन हरमुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का हरम है। और अल्लाह तबारक ताला रहता कहाँ है, हमारे दिलों में। नहनु अक्रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से ज्यादा करीब हूँ और मुझ खुदा का घर मोमिन का दिल है। अपने दिल से पूछिए इमाम राजी है या नहीं। और आयतुल्ला बेहजत, आयतुल्ला कश्मीरी, आयतुल्ला काजी तबातबाई, ये वो उरफा हैं जो माए नाज है मकतबे तशय्यो के। ये फरमाया करते हैं कि अपने 24 घंटे के टाइम में से कुछ टाइम आप अपने जमाने के इमाम के लिए निकालिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, थोड़ी देर अपने इमाम से बात करें। क्या बात करें, जो जो दिल में आता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने इमाम से गुफ्तगू करें तो आपके सवाल का जवाब आपका दिल आपको जरूर देगा। ओके ओके मिसेस हैदर, ओ सवाल तो बड़ा टेक्निकल सवाल है। ओके 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 वर्दा अली का सवाल है, तुम्हारा सवाल भी बेटा, ये जो अभी तुम्हारा सवाल मैं पढ़ रही हूँ कि जब से हम देख रहे हैं हालात ये हो रहे हैं। ओके ठीक है, इसका जवाब तुम्हें किसने कहा कि इन्हें कुछ नहीं होता। तुमने लगता है खबरें नहीं पढ़ी है, रॉयल फैमिलीज के बहुत सारे लोग इस वक्त इस वबा की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो मेंशन ना लो। देखो बेटा, अल्लाह ने नमरूद को मच्छर से मारा। जानते हो नमरूद कौन था? नमरूद बाबिल में रहता था, बाबिल आज के इराक में। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला तो किस जगह डाला था? इराक में, शहर बाबिल के करीब। नमरूद ने उकाबों को ये साथ, उकाबों के पर के साथ उसने बास्केट टोकरी लगा के परिंदा बनाया था उड़ने के। उस जमाने का समझे फास्ट टेक्नोलॉजी वो थी। उकाबों के पर से उसने उड़ने का एक सामान बनाया था कि मैं उड़ के जाऊंगा और अल्लाह से जंग लड़ूंगा। ये आप पढ़े, इनकी किताबों में बहुत ज्यादा जिक्र है। अल्लाह तबारक वताला ने इसी नमरूद को एक छोटे से मच्छर, जो उस जमाने में नजर आता था, मच्छर के जरिए नमरूद को किस तरह से मारा। सुनो ये बात बेटा, उससे बड़ा साइंटिस्ट कौन था, उससे बड़ा खुदाई का दावा करने वाला कौन था, जब मच्छर उसके नाक के जरिए उसके दिमाग तक पहुंचा तो तड़पता था। रिवायतों में है, बहुत सारी किताबों में जिक्र है कि वो सर को दीवारों पर टकरे मारता था, तो अल्लाह के हुक्म से वो मच्छर में गोयाई आई, मच्छर की आवाज इस नमरूद ने सुना। मच्छर ने कहा, ए नमरूद, तू खुदाई का दावा करता था, हाँ, जो अल्लाह से लड़ने के लिए परिंदे बना रहा था, मैं तुम्हारे इस वक्त दिमाग के अंदर हूँ, मेरे पर का मेरे जिस्म का आधा हिस्सा मर गया है, आधा जिंदा है, या आधे को तू रूह बख्श, जिंदा कर, मैं निकल आऊं, या जो आधा फड़कता है तो तुझे तकलीफ होती है, उस आधे को भी मार दे। तो आपने देखा, नमरूद अपनी तमाम खुदाई के दावे के साथ उस मच्छर के सामने बेबस रहा। आज के बड़े 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 सियासतदान, बड़े बड़े हुकूमतें, एक ऐसी वबा जो नजर भी नहीं आता उसके सामने बेबस है। आप थोड़ा सा न्यूज देखो बेटे, आजकल सोदिया में और बहुत सारे जगहों में किन किन तक ये आसे पहुंचा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गरीब तबका ही इस आजमाइश में हो, जब आजमाइश आती है तो सब पे आती है। वो जो हमारा लेक्चर होगा ना बेटा, कोरोना के बाद क्या होगा, उसमें ये कुछ चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। मोहम्मद अशरफ, ओहो जबरदस्त, क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम शामिल होंगे, और अगर हों तो क्या उनके बाजू कता शुदा होंगे या नहीं? ओ तेरी जिनाब, इस मौजू का ताल्लुक रिजअत से है, ठीक हो क्या? और रिजअत क्या है? रिजअत को हमने कुरान से साबित करना है, रिजअत को हमने आइमे अथार अलैहिस्सलाम के दुआओं से साबित करना है, रिजअत को हमने कलाम अहले बैत से साबित करना है। बेटा जरा हमें अगले लेक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता तुम को कुरान की तरफ ला रही हूँ, और इसका जवाब तफसील से दूंगी। खो बेटा, इसका जवाब यस नो नहीं है। अगर मैं कहूँ हाँ, आप कहेंगे अच्छा कैसे होगा, अगर मैं कहूँ ना, आप कहेंगे क्यों नहीं होगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप मौजू ए रिजअत को हम समझेंगे, उसके बाद इस तरह के बहुत सारे सवाल आप खुद ब खुद हल होंगे इंशाल्लाह। क्या गैर मासूम नायब इमाम हो सकते हैं? कुमेल रजा, क्या गैर मासूम, जिन जिन्होंने ये सवाल जिनके जहन में, बहुत गौर से सुनो बेटा, वेरी गुड, क्या गैर मासूम नायब इमाम हो सकते हैं? अच्छा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कूफा मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा, क्या वो इमाम के नायब थे या नहीं? थे या नहीं? क्या वो मासूम थे? हजरत नबी करीम ने जाफर तैयार को हफ्शा भेजा, क्या वो नबी के नायब थे या नहीं? मासूम थे क्या? क्या इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम 14 साल जो कैद में रहे, लोगों को बहुत सारे सवालात थे, ये सवालात लोग किससे पूछते थे? अपने खौम, ज़कात, ये चीजें किनके पास जमा करवाते थे? अगले इमाम का तायुन तब होता है जब पिछले इमाम की शहादत होती है, तो बसरा से लेकर शाम से लेकर मदीना तक लोग किनके पास जाते थे सवालों का जवाब लेने? तो वो इमाम अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द हैं, जिन्हें इमाम चुनते हैं, वो नायबीन इमाम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मासूमीन में से हजरत अली अलैहिस्सलाम को तकरीबन 5 साल की हुकूमत का मौका मिला, और इन 5 सालों में आपने मिस्र मालिक अश्तर को भेजा, मदाइन सलमान फारसी को भेजा, अम्मारे यासिर को चुना, कि ये इमाम अलैहिस्सलाम के क्या थे? क्या थे? नायब नहीं थे, नुमाइंदे नहीं थे। क्या गैर मासूम नुमाइंदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई हर्ज है क्या? हजरत मुस्लिम इब्ने अकील इमाम अलैहिस्सलाम के नायब थे, सफीर बन के गए थे। जाफर तैयार नबी की नियाबत में ही टूट गए थे। गैर मासूम इमाम के नायब बन सकते हैं, कोई उसमें मसला, कोई हर्ज नहीं है। और इमाम जमाना अलैहिस्सलाम के 4 नायबीन थे, चारों के चारों गैर मासूम थे। कहा है बेटा हजरत के साथ? अभी एक बच्ची का सवाल था, वो अच्छा
अच्छा जनाब, एक सवाल आया है। अब जो जो मेरे सामने आ रहे हैं ना बेटा, मैं वो पढ़ रही हूँ कि पांच बच्चों को मैंने कहा था अहले बैत की इस्लामिक स्टोरी सुनाए, ठीक है, और बच्चे जो है शयातीन से, शैतान से डर जाते हैं, यही है, क्या करें। देखिए बेटा, अपने बच्चों को चाहे वो किसी भी उम्र का हो, आयतुल कुर्सी, सूरह अलहम, चार कुल जरूर सिखाएं, और उन्हें चार कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोने की जरूर तालीम दें। अगर बच्चे इस तरह से सोएं तो उन्हें डर नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे डरते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमारा भी मसला है। आप अपने बच्चों को बचपन से मत डराए, वो आएगा, बाव आएगा, बिल्ली आएगी, वो बाबा जी आएंगे, जब आप इस तरह की बातें करें तो वो डरेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं आजकल के जो कार्टून है, आप देखें हमारे ज्यादातर कार्टून जो बच्चों को पसंद है उसमें एक ब्लू कलर का बड़ा सा सर होता है और दड़ उसका जरा बारीक सा होता है। इस तरह के एक फजाई मखलूक आजकल के कार्टूनों में बहुत ज्यादा है और इन कार्टूनों की वजह से भी बच्चे डरते हैं। तो वो ये जो कार्टून मैंने आपको बताया, इसका एक नाम भी है ना, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। इस कार्टून के बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताऊंगी इंशाल्लाह, इसके पीछे किन मलऊनों का हाथ है। तो आप बच्चों को खुद भी ना डराएं, डरावनी चीजें भी ना बताएं और डरावने कार्टून भी ना देखने दें, तो इंशाल्लाह ये बच्चे, इंशाल्लाह मौला की जमानत में खौफ और हराज इनके दरमियान नहीं होगा। ओके जिना, सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 4 में, ओके, हाँ ये तो मैंने आपसे कहा था ना, सूरह बनी इसराइल के फितने क्या हैं। बेटा मैं कुछ चीजें ना दबे लफ्जों में बताऊंगी और अगले लेक्चर में हमारा कल से ये सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह मैंने आप लोगों को कुरान की पेशन गोई और हालात हाजरा, इस मैंने आप लोगों के साथ इंशाल्लाह 4 दिन तक हमारी क्लासेस रहेंगी कल से, यही 4 से 5 बजे का टाइम होगा, और आपने खुद भी सुनना है, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्हें भी जरूर आप इन्फॉर्म करें। इन क्लासेस में मैं आपको ये जो सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 4 और आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक, सूरह फतह की आखिरी आयत और सूरह सबा की आयतें, सूरह नमल की आयतें, सूरह कहफ की आयतें, इनकी तफसील में आपको बताऊंगी। एक और मैं बात आपको बता दूं, मेरे क्लास के बहुत बहुत प्यारे बच्चे, हजरत इमाम हुसैन, ऐसे में इसलिए ये बातें छोड़ रही हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चालू हो जाए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके सरे मुबारक ने नो के सिना कौन सी सूरत की तिलावत की थी, जल्दी जल्दी लिखो जरा, देखूं हो या नहीं क्लास में। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक ने कूफा के बाजार में, शाम के बाजार में किस सूरह की तिलावत की थी, उस सूरह का नाम क्या है? ओके, एक बच्ची का जवाब आ गया, सूरह कहफ। सूरह कहफ की तिलावत क्यों की थी, सूरह कहफ में क्या है, सूरह कहफ में क्या राज है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं। इमाम हुसैन ने सूरह फजर की तिलावत नहीं की, सूरह कदर की नहीं की, सूरह ताहा, सूरह नूर की तिलावत नहीं की, बल्कि सूरह कहफ की तिलावत की। सूरह कहफ में अल्लाह के कौन से राज पोशीदा है जिसका हिंट इमाम ने कैद हयात में नहीं, शहादत के बाद नो के सिना जवाब दिया, तो ये क्या था, इस पे भी हम इंशाल्लाह अगले दिनों में गुफ्तगू करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं कुरान के पॉइंट दूं और आपके हाँ इसे सच कह रही है क्या था, फिर आप सोचने लगे, फिर आप मुझसे भी पूछे और मैं आपको भी उसका जवाब दूं। वेरी गुड, जिस जिसने सूरह कहफ देखा बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, आप पास हो गए जनाब, पास हो गए मेरे प्यारे बच्चे। क्या प्राइज मोन में से क्या प्राइस बॉन्ड में से खुम्स दिया जा सकता है? जी बेटा, प्राइस बॉन्ड आपकी कैश की तरह है, आपकी रकम है जो आपके हाथ में है। अगर आपने प्राइस बॉन्ड लिया, साल गुजर गया, आपके पास वो मौजूद है तो उसका खुम्स बनता है। अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया उसमें भी खुम्स बनता है, और अगर आपने प्राइस बॉन्ड अपने उन पैसों में से लिया है जिसका आप खुम्स दे चुके हैं, फिर जो प्राइस बॉन्ड आपके पास पड़ा है उसका खुम्स नहीं बनता, लेकिन अगर उसमें से आपका निकल आए तो उसका खुम्स बनता है। अच्छा जनाब, और सवाल ना, अच्छा सुफियानी का खुरूज से क्या मुराद है। अच्छा सुफियानी कौन है, लश्कर सुफियानी कौन है, लश्कर सुफियानी का खरूज होगा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि और इमामान मासूम अलैहि सलाम ने हमें बताया है कि आखिर जमाना में सुफियानी खरूज करेगा, शामात से उठेगा। और ये सुफियानी कौन है, क्या करेगा? मेरा बेटा तुम्हारा सवाल बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्या सुफियानी खरूज कर चुका है, यानी इनके हाथों में जो परचम होंगे वो काले रंग के होंगे और वो जुल्म सितम करते हुए शाम, इराक से करते हुए यमन और इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा यहाँ तक के खसफ बेदा होगी। जी बेटा ये सिलसिला हम कह सकते हैं कि भाई क्या ये खुरूज कर चुके हैं या नहीं, आप रिवायतें देखें और हालात हाजरा को देख के आप अपने अकल से फैसला करें कि क्या ये कर चुके हैं या करने वाले हैं, रिवायतें भी देखें और हालात हाजरा पे भी कड़ी नजर रखें। जो नौजवान, जो शख्स अपने जमाने के हालात से बेखबर हो वो उन खवारिज की तरह है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली के कत्ल में शरीक थे, क्योंकि जब आप अपने जमाने से बेखबर होते हैं तो आपको की आवाज और बातिल की आवाज की पहचान नहीं होती। ओके क्या घर गिरवी पे लेना जायज है? हाँ बेटा गिरवी पे लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक मुख्तसर सी रकम भी साथ तय कर लें, जैसे अगर आपने 10 लाख की गिरवी है तो महीने के 500 भी रखें ताकि वो सूद और बाकी उस जुमरे में ना आए। ओके और बाकी सवालात, आप लोगों ने इतने काफ काफ लिखा कि वो सवालात ही नीचे चले गए। ओके सुफियानी का खरूज का मैंने बता दिया, अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाओ, जरा गौर करो, गौर फिक्र करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ देर कुछ लम्हा गौर व फिक्र करना 70 साल की इबादत से अफजल है, क्योंकि जब आप गौर व फिक्र करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए वाजे होती हैं। जी हाँ ओके इस प्राइस बॉन्ड का जवाब भी हो गया, टाइम भी 5:10 हो गए, क्या करना है जनाब, आगे बढ़ना है या रोक दूं? अच्छा खुम्स के बारे में जो आपने सवाल किया है, मेरा बच्चा अगर आपके पास मेरा नंबर है मेरे नंबर पे करो, मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊं, क्योंकि खुम्स का मसला ऐसा नहीं है जो मैं इधर बैठ के ठक ठक करके बता दूं और आप समझ लें, क्योंकि ये बहुत खुम्स ज़कात हज ये बहुत पेचीदा मसाइल है जिसे बहुत टाइम लगता है समझने में और इसे एक जुमले में समझाना इस मौजू का हक अदा नहीं होता। अच्छा जनाब आपने सूरे बकरा की आयत नंबर 124 के हवाले से सवाल क्या किया था बेटा, दोबारा लिखना जरा सवाल क्या था आपका, क्योंकि सवालात मैंने आपको बताया 1000 से ज्यादा 1000 के करीब सवालात हैं, तो सूरह बकरा के हवाले से आपका क्या सवाल था, एक दफा फिर लिखिए मैं जरा देखूं। ओके क्या गैर मासूम, ओके ये भी हो गया। जी जनाब आपके तकरीबन कमोबेश सवालों का मैंने जवाब दे दिया, और जिन लोगों ने जादू के हवाले से परेशान घर में परेशानी जो सवाल किया दुआ के हवाले से, आप एक काम जरूर कीजिए, देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमें बहुत सारे दुआओं की तालीम दी है और उन दुआओं को तालीम देने के मकसद और वजह भी यही थी कि हम कलाम अहले बैत के जरिए अपनी जिंदगियों में सुकून दे सकें और अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। ज़ियारत आशूरा नोट कर लें, ज़ियारत आशूरा, दुआए अलकमा, ज़ियारत अमीनुल्लाह और दुआए कामूस से कुदरत, इसका एक और नाम भी है कामूस से कुदरत का दूसरा नाम दुआए सैफी सगीर, सैफी सगीर या कामूस से कुदरत एक ही दुआ का दो नाम है। ये चार दुआएं आप अपनी जिंदगी में शामिल करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के लुत्फ करम से आपके बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे मसाइल हल होंगे। ज़ियारत आशूरा, दुआए अलकमा, ज़ियारत امین اللہ اور قاموس قدرت یا سیفی صغیر، یہ آپ نے پڑھنا ہے اور کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی سچویشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کوئی عذر شرعی ہے تو آپ الفاظ کو ہاتھ نہ لگائیں، الفاظ کو ٹچ کیے بغیر آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، اور اسے پڑھتے رہیں، اسے چھوڑے نہیں. اس سے جادو، حسد، چشم بد، ان چیزوں سے آپ بچے جا سکتے ہیں. اور ان دعاؤں کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ اللہ کے کس قدر نایاب نعمتیں اور کس قدر نایاب کرشمے. جی جناب، آج کے لیے کافی ہے، میرے خیال میں 5:15 ہو چکے ہیں. جی جناب، ابھی نیچے مزید اگر کوئی سوالات ہوں تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں. اب خلاصہ میں کر دوں، آپ کے جو آن لائن سوالات تھے ان کے کم و بیش ہم نے جواب دیا، اور کل سے یہی ٹائم 4 سے 5 بجے انشاءاللہ آن لائن رہیے. آج ہم میسج بھی چلا دیں گے، ہمارا موضوع ہوگا قرآن کی پیشن گوئیاں اور حالات حاضرہ. اس میں آپ نے فری میسنز کے بارے میں اور الومیناتی سسٹم کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کر کے آئیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے فیمینسٹ کیا ہوتے ہیں، یہ سب قرآن نے 1400 سال پہلے ان سب کا تذکرہ کیا ہے. بس نادانی یہ ہے، بے توفیقی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اور یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان آ گئیں، اور ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے ہم بہت سارے چیزوں میں جکڑ گئے. یہ 3 چیزیں جو میں نے بولی، اور حالات حاضرہ، قرآن کی روشنی میں قرآن کی پیشن گوئیاں، یہ ہم 4 دن کی کلاسز لیں گے. اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، جوائنٹ فیملی میں ہمارا سسٹم کیا ہونا چاہیے، اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حق کیسے ادا کریں، اگر ہم میں سے کوئی میاں بیوی کے درمیان لڑائی کے باعث بنے تو ان کے لیے ثواب ہے یا عقاب ہے، اگر ثواب ہے تو کیا ہے، اور اگر عقاب ہے تو وہ عقاب کیسا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر ہوگا. اور اگر والدین کے حق پامالی ہوتی ہے تو اس کا عقاب کیا ہے، بیوی بچوں کی حق تلفی ہوتی ہے اس کا عقاب کیا ہے، اور اگر والدین کے حقوق ادا کیے جائیں، بچوں کے، بیوی بچوں کے، شوہر کے حقوق ادا کیے جائیں، اور ان کے ثواب اور صلہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے اگلے دنوں میں، جب تک کوارنٹائن چل رہا ہے تب تک ہمارا یہ سلسلہ چلے گا. اب آپ نے غور سے سننا ہے یہ والی بات، ہم نے ماہ رمضان میں آن لائن تفسیر کی کلاسز شروع کرنی ہے، اور ان تفسیر کی کلاس میں آپ کی رجسٹریشن ہوگی. جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ نے رجسٹریشن کروانا ہے، کیونکہ تفسیر کی کلاس ہم یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے نہیں بلکہ زوم کے ذریعے کریں گے، اور اس میں میں نے قرآن کی ایک سورت زبانی یاد بھی کروا دینا ہے اور تفسیر بھی کروانا ہے. جو لوگ میرے قرآن، ہمارے قرآن کلاس سے مانوس ہیں وہ جانتے ہیں 15 دنوں میں ہم نے سورہ مدثر، مزمل جیسی صورتیں کر لی. صرف 15 دنوں میں ہم نے سورہ الرحمن، سورہ ملک، سورہ دہر، اس طرح کی صورتیں ہم نے گزشتہ سالوں میں کروا دی ہیں، اور اس دفعہ ہم نے وہ سورہ کروانا ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں ہے. سورہ کا نام آج نہیں بتاؤں گی، پھر کبھی جب میرا موڈ ہوگا تو بتاؤں گی، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذرا دماغ میں نا وہ تجسس رہے. تقریباً اس سورہ کی 83 آیتیں ہیں، میرے خیال میں 83 ہیں، لیکن آیتیں مختصر مختصر ہیں. وہ سورہ میں حفظ کرواؤں گی، آپ نے جو نمبر آپ کے پاس ہے اس پہ رابطہ کرنا ہے، اور ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک یہ کلاس انشاءاللہ ہوگی. اور ماہ رمضان کا حق ہم قرآن اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے گزشتہ سالوں کی طرح ہم ادا کر سکیں انشاءاللہ. آج کے لیے کافی ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ہمارے گھروں کو فاطمی گھر بنا، ہمارے بچوں کو حسینی بنا دے، ہمارے گھر کے ماحول کو کربلائی بنا دے، ہمارے بہن بھائیوں کو، والدین کو، گھر والوں کو صحت، تندرستی، طول عمر عطا فرما. پروردگارہ ہمارے وہ بچے جو اس وقت قرآن سے مانوس ہو کر قرآنی سوال سوالات کے لیے بیٹھے تھے اور کچھ نے جواب لیا، کچھ جواب لیں گے۔ پروردگارہ انہیں دنیا و آخرت میں قرآن و اہل بیت سے جدا نہ کرنا، پروردگارہ ہمیں روح الیقین کی منزل عطا فرما، پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ بیت اللہ الحرام، مسجد النبی، مقامات مقدسہ کے دروازے ہم گناہگاروں پہ کھول دے۔ پروردگارہ یہ جو اس وقت ایک آزمائش ہے، یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ، ان ہستیوں کا واسطہ جن کا نام لے کر تو نے آدم علیہ السلام کو یہ مغفرت فرمائی تھی، پروردگارہ ان ہستیوں کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما، اور ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک پاک، ارض پاک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جن و انس کے شر سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو گود خالی ہیں آباد فرما، جوان بچوں کو بہترین ہم خیال، ہم مزاج، ہم فکر، شریک حیات عطا فرما۔ پروردگارہ امام وقت علیہ السلام کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، امام علیہ السلام کو ہم سب سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔